ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। इस अध्याय का शीर्षक है ऋषभदेव का जन्म। अथ अनया अपि न भवतः विजया उरुभारभरया समुचितम् अर्थम् इह उपलभामहे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमने आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपा करके दोहराए। हमने आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि बिना भूख के किसी के सामने ढेर सारा भोजन रख दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार बड़े बड़े याज्ञिक अनुष्ठानों में श्री भगवान को तुष्ट करने के लिए अनेक वस्तुएं एकत्र की जाती हैं, किंतु यदि ईश्वर के प्रति लगाव या प्रेम नहीं है तो ये सारा आयोजन निरर्थक है। ईश्वर स्वयं ही पूर्ण है और उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि हम उन्हें थोड़ा जल, एक फूल तथा एक तुलसी दल भेंट कर दें तो वे उन्हें स्वीकार कर लेंगे। श्री भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भक्ति है। बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं। पुरोहितों को ये सोचकर विषाद हो रहा था कि वह भक्ति के पद पर नहीं है और ईश्वर उनके यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। तो ये 5वें स्कंद का अध्याय 3 है। अध्याय का शीर्षक है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो इस अध्याय में जो अग्निधर थे उनके ज्येष्ठतम पुत्र राजा नाभि के निर्मित चरित्र का वर्णन किया गया है। महाराज प्रियव्रत के जो अन्य कई पुत्र थे, कई संतान थे, उसमें थे महाराज अग्निधर और पुत्र 6 से महाराज नाभि ने कठोर तपस्या की थी और उन्होंने अपने पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए और यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। भक्तों पर दयालु होने के कारण श्री भगवान ने महाराज नाभि की तपस्या से बड़े परम प्रसन्न हुए और चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु ने महाराज नाभि को दर्शन दिया और उनके दर्शन करते ही जितने भी वहाँ पुरोहित थे उन सब ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु ने महाराज नाभि को वरदान दिया, एक पुत्र का वरदान दिया और जो कि भगवान के से ही अपने ही समान होगा और उस पुत्र का नाम महाराज ऋषभदेव के रूप में अवतरित होंगे। महाराज ऋषभदेव भगवान के साक्ते हुए अवतार बताए जाते हैं और उन्हीं के 100 पुत्र हुए थे जिनमें भरत महाराज प्रमुख है, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा इस पृथ्वी का नाम। इस पृथ्वी का नाम पहले था इलावर्त वर्ष, महाराज भरत के आने पर इस पृथ्वी का नाम पड़ गया भारतवर्ष। तो आज के श्लोक में यहाँ लिखा है हमने आपको अनेक वस्तुएं अर्पित की हैं और आपके लिए अनेक यज्ञ किए हैं, किंतु हम सोचते हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने सारे आयोजनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक में ये तात्पर्य में प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि भगवान भावग्राही जनार्दन है और भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। वो षड ऐश्वर्यपूर्ण है और लाखों करोड़ लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रत हैं। भगवान के धाम में भगवान को हमारी सेवा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और ना ही भगवान जो है बद्ध जीवात्माओं से सेवा ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को यहाँ पर भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजते हैं, जिनके माध्यम से बद्ध जीव भगवान की सेवा कर सकता है। असले निपास एक को आएगा तो बद्ध जीवात्माओं से भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान सेवा स्वीकार करते हैं शुद्ध भक्तों के माध्यम से। और जब शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं, बद्ध जीव आश्रय लेते हैं, तो ऐसी सेवा जो है भगवान स्वीकार करते हैं। जय हो श्री राधिका रमन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण राम की जय। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तया प्रेक्षति तदम भक्तया उपरितम अश्वामी प्रेतात्मना। भगवान बता रहे जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ता फूल फल जल देता है उसे मैं ग्रहण करता हूँ। फूल खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन विश्वनाथ जी के ठाकुर कहते हैं कि जब इसको भी प्रेम और भक्ति से अर्पित किया जाता है तो भगवान फूल सूंघते भी हैं और उसको खा भी लेते हैं। तो अष्टामी का मतलब है खाना, तो भभगवान स्वीकार करते हैं। शबरी के झूठे भेद स्वीकार किए, विदुरानी से केले के छिलके खा लिए, तो भगवान जो है भावग्राही हैं, भावग्राही हैं। और इस कारण से हमें शुद्ध भक्तों का सहारा लेना पड़ता है, और इसी कारण से तुलसी दल डालना पड़ता है भोग में। जब तक भोग में तुलसी का दल नहीं होगा भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि हमारा हृदय अभी भी निर्मल नहीं है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की कमी है, कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ है। तो इस कारण से तुलसी दल के माध्यम से और गुरु परंपरा के माध्यम से भोग लगाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, और इसे भोग को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कह रहे, यज्ञ शिष्टाश्र संता मुच्यंते सर्व कल विषय भुंजते थे अगम पाप पचनते थे आत्म कारणार्थ। और यज्ञ शिष्टाश्र संता जो संत लोग हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो यज्ञ में अर्पित जो भोजन है उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते थे अगम पावा पचनते थे आत्म कारण। लेकिन जो अपने जीवा की तृप्ति के लिए, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए भगवान का भोग स्वीकार कर लेते हैं, बिना भोग लगाए स्वीकार कर लेते हैं, तो वो केवल क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। पचनते थे आत्म कारण, केवल अपने लिए, अपने जीवा की तृप्ति के लिए खा रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। वो ऐसा जो अन्न है वो मन को दूषित करता है, और फिर हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान ने कृपा करके हमें सब कुछ दिया है, और जीव का ये कर्तव्य है जिसने विशेष रूप से मनुष्य देह धारण किया है कि जो भी उसको प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से उसे भगवान को अर्पित करे, भगवान को भेंट चढ़ाए। इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का मतलब यह है कि हम लोग अर्पित करते हैं भगवान को अपनी सेवा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को सेवा अर्पित करते हैं। और इसमें जैसे हमने बताया कि शुद्ध भक्ति माध्यम से, या फिर जैसे तुलसी दल डाला जाता है तो उसके माध्यम से भगवान को भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद इसी बात पर जोर दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान भूखे नहीं हैं, और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं कि अगर हम केवल जल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, केवल ये अर्पित करें, तुलसी दल मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल ही अर्पित करें और जल हो, हमारे पास कुछ अधिक धन नहीं है, सामग्री नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है, तो केवल तुलसी दल से ही और जल से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस बात को हमें समझना है। तो एक प्रसंग हम लोग ले रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से। कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर लिखा ये ग्रंथ जो चैतन्य चरितामृत है। इस ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर से विस्तारण किया है महाप्रभु की जो लीलाएँ हैं जिसको संकीर्तन लीला कहते हैं। इस लीला में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी बातें दर्शाई हैं, और विशेष रूप से संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन और प्रसादम का वितरण, और साथ में क्या, भक्तों का संग। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं चैतन्य चरितामृत में। आपको अधिकांश स्थानों में ये बातें देखने को मिलेंगी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे, ये अध्याय है मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत का अध्याय, मध्य लीला का अध्याय 3 है। जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर पहुंचते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको धोखे से चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर ले आते हैं, गंगा जी के तट पर ले आते हैं। वैसे तो उनका उद्देश्य था, महाप्रभु जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन लेकर आ गए उनको कहाँ पर, शांतिपुर ले आए और अद्वैत आचार्य के घर पर पहुंचते हैं। और अद्वैत आचार्य ने बहुत सुंदर व्यवस्था की होती है पहले से ही उनके लिए, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए होते हैं और इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से कर रहे हैं। ये अध्याय है तो इसमें हम लोग कुछ प्यार पढ़ेंगे, अब सुनेगा। प्रभु लोय जावामी तहर मंदिरे सावधानी रोहिन जिन नौका लोय तीरे। श्री नित्यानंद गोस्वामी ने उनसे कहा, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा के किनारे से शांतिपुर ले जाऊंगा, आप अद्वैताचार्य से कहें कि वे सावधान होकर एक नाव लेकर किनारे पर रहे। तो नित्यानंद गुरु ने चंद्रशेखर आचार्य से ये प्रार्थना की थी कि आप अद्वैत आचार्य के घर पर पहुंचेगा और जैसे हम लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां पर आप किनारे पर पहुंच जाए, एक नाव लेकर किनारे पर पहुंचे। तबे नवदीपे तुमी कोरिहा गमान सची सहलोया सब भक्त गान। नित्यानंद प्रभु ने कहा उसके बाद मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और आप नवदीप जाकर माता सची तथा अन्य भक्तों को लेकर लौट आए। तारे पाठाइया नित्यानंद महाशय महाप्रभु रागे आसे दिल परिचय। आचार्य को अद्वैत आचार्य के घर भेजकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और अपने आने की सूचना दी। प्रभु कहे श्रीपाद तुम्हार कोथा के गमान, श्रीपाद कहे तुम्हार संगे जाव वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु भाववेश में थे, अतः उन्होंने पूछा नित्यानंद प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो। नित्यानंद ने उत्तर दिया कि मैं आपके साथ वृंदावन जा रहा हूं। प्रभु कहे कोत दूरे आछे वृंदावन, तेहा कोहे ना खोरो जई जमुना दर्शन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पूछा कि अब वृंदावन कितनी दूर है। तो नित्यानंद ने उत्तर दिया, देखिए ना ये रही यमुना नदी। ए तो बोले जानी ल तारे गंगा सन्निधाने, आवेश प्रभु झैला गंगा रे जमुना ज्ञाने। ये कहकर नित्यानंद प्रभु ने गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाववेश के कारण गंगा नदी को यही को ही यमुना नदी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो महाप्रभु भाववेश में आ गए थे, जैसे नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये तो यमुना जी हैं सामने देखिए, तो महाप्रभु भाववेश में आ गए और सोचा कि हाँ ठीक है वृंदावन पहुंच गए। महाप्रभु ने कहा ओ भाग्य यमुना रे पायलु दर्शन, ये तो बोले यमुनार खोरे न स्तवान। ओ कितना सौभाग्य है आज मेरी यमुना नदी के दर्शन हुए हैं। इस तरह गंगा को ही यमुना नदी मानकर उन्होंने आप उसकी स्तुति करना प्रारंभ की। तो यहाँ पर स्तुति की चैतन्य महाप्रभु ने और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो श्लोक दे रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने उदित किया, जो कि कवि कर्णापुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इसका उल्लेख किया है। ए तो बोली नमस्कारी नमस्कारी कैला गंगा स्नान, एक कोपी नाही द्वितीय परिधान। ये मंत्र सुनाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नमस्कार करके गंगा नदी में स्नान किया। उस समय उनके पास एक ही लंगोटा था, कोई दूसरा वस्त्र नहीं था। खैर प्यार हमने पढ़ते ज्यादा समय लग जाएगा, तो सीधा मनवाद पढ़ रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां द्वितीय वस्त्र के बिना खड़े थे तो अद्वैत आचार्य अपने साथ नया लंगोटा तथा भारी वस्त्र लेकर नाव से वहां आ गए। अद्वैत आचार्य आकर महाप्रभु के समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु को सारी परिस्थिति के विषय में संदेह होने लगा। भाववेश में ही महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा आप यहां क्यों आए, आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूं, आप यहां क्या कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से एक सारी स्थिति प्रकट कर दी, आप जहां हैं वही है वृंदावन, ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आप गंगा नदी के तट पर आए हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है, वह मुझे गंगा के तट पर ले आया है, और मुझसे ये बतलाया कि ये यमुना है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद पर धोखा देने का आरोप लगाया तो श्री अद्वैत आचार्य ने कहा, नित्यानंद प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है, आपने सचमुच अभी यमुना नदी में स्नान किया है। फिर अद्वैत आचार्य ने समझाया कि उस स्थान पर गंगा तथा यमुना दोनों साथ साथ बहती हैं, पश्चिम की ओर यमुना है और पूर्व की ओर गंगा है। गंगा तथा यमुना दोनों इलाहाबाद में संगम करती हैं और बाद में यहाँ पर भी दिखाई पड़ती हैं। अद्वैत आचार्य ने सुझाया कि चूंकि चैतन्य महापुरुष यमुना नदी में स्नान किया है और उनका लंगोटा गीला है, अतः उन्हें अपना लंगोटा बदलकर सूखा वस्त्र पहनना लेना चाहिए। अद्वैत आचार्य ने कहा, कृष्ण प्रेम के भाववेश में रहकर आप 3 दिन से अनवरत उपवास करते आ रहे हैं, अतः मैं आपको अपने घर पर आमंत्रित करता हूँ जहाँ आप भिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चले। मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है, तरकारियां भी अत्यंत सादी हैं, कोई भी व्यंजन नहीं है, थोड़ा रसाखा है और कुछ पालक है। ये कहकर श्री अद्वैत आचार्य उन्हें नाव में चढ़ाकर अपने घर ले आए। वहां पर अद्वैत आचार्य महाप्रभु के चरण पखारे और इस तरह भीतर भीतर परम सुखी हुए। तो चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया जाता था जगन्नाथपुरी में और कई स्थानों में, गृहस्थ भक्त लोग हैं महाप्रभु को आमंत्रित करते थे, निमंत्रण देते थे प्रसाद के लिए, और चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे। लेकिन महाप्रभु ये भी कहते थे कि मैं तो उनके घर जाता हूँ जो कि कौन है, लखपति हैं। लखपति यानी कि 1 लाख नाम लेते हैं कम से कम, उन्हीं के घर में जाता हूँ। तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने एक जगह बताया है चैतन्य भागवत की टीका में कि मठ में रहने वाले जो भक्त हैं उनको चाहिए कि प्रत्येक दिन वो 64 माला का जप करें, नहीं तो उनको भगवत प्रसाद लेने में बाधा आएगी। तो प्रभुपाद ने कृपा करके हमें केवल 16 माला के लिए कहा कम से कम, और बाद में लेकिन प्रचार के लिए कहा, संकीर्तन के लिए कहा। इसलिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है, बिना यज्ञ के प्रसाद ग्रहण करेंगे तो बाधा तो आएगी, कर्म बंधन में फंसेंगे। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य की पत्नी ने सारी खाद्य सामग्री तैयार की, फिर स्वयं श्री अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु भगवान विष्णु के को अर्पित की। तो कौन थी अद्वैत आचार्य की पत्नी? सीता ठाकुरानी। सारे पकाए गए भोजन के 3 बार भाग किए गए थे। 1 भाग भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली पर परोसा गया, 3 भागों में से 1 भाग धातु की थाली पर रखा गया और शेष 2 को केले के पत्तों पर। ये पत्तियां बीच से कटी नहीं थी और ऐसे केले के वृक्ष से ली गई थी जिसमें कम से कम 32 घेवर लगे थे। इन दोनों पत्तों में निम्नलिखित व्यंजन रखे गए थे। अब इतने सारे व्यंजन का आमरण किया गया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है, कितने सारे व्यंजन बनाए हैं अद्वैत आचार्य ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, जो हमारे इस्कॉन के कुक्स हैं उनको ये सारे व्यंजन नोट करने चाहिए ताकि वो भी इस तरह से भोग लगा सके। तो यहाँ बता रहे हैं, अत्यंत सुंदर दाने वाले ठीक से पके चावल का ढेर लगा था और बीच में गाय के दूध से निकाला गया पीले रंग का घी था। चावल के ढेर के चारों ओर केले के पेड़ों की छाल से बने पात्र थे जिनमें तरह तरह की तरकारियां तथा मूंग की दाल थी। पकी तरकारियों में पटोला, कुमड़ा, मान कच्चू तथा अदरक और पालक से बना सलाद था। तो ये सब बंगाल में जाएंगे देखने को बहुत मिलेगा। तो बंगाली जो है उनको चाहिए, बंगाली डिशेज जो है बनाते हैं, या बंगाली जो है नाना प्रकार के जो व्यंजन बनाते हैं विशेष रूप से बंगाल में मायापुर में, तो उनसे सीख कर हम लोग यहाँ पर भी भोग लगा सकते हैं गौरताई को। तो सेवा का मतलब तो यही है जो उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, है ना। जो भी कृष्ण को अच्छा लगता है अगर वो बनाया जाए और प्रेम से श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। सभी प्रकार की तरकारियों के साथ सुखद एक तिक्त तरबूज मिला था जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़ुए तथा चरपरे सुखद की 5 किस्में थी। विविध तरकारियों में नीम के मुलायम पत्तियों का एक बैंगन का भरता था। बंगाल में बैंगन बहुत खाते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए बैंगन अच्छा नहीं है लेकिन बंगाल में बैंगन की तरकारियां बहुत बनती हैं। पटोल फल को फूल बड़ी के साथ तला गया था। हरे कृष्ण। कुष्माण मांचा की नामक व्यंजन भी था। नारियल का गुद्दा दही तथा मिश्री से बिना व्यंजन अत्यंत मीठा था। केले के फूल की कड़ी, केले के फूल की कड़ी खाई है कभी? और दूध के साथ पकाया गया कुमड़ा प्रचुर मात्रा में था। पाश्चात्य देश में तो इन व्यंजनों की कल्पना भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पाशा के जगत में जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ खाने को ही नहीं मिलता है, इसलिए जानवरों की हत्या करके, पशु हत्या करके मांस भक्षण करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि इतने व्यंजन बनाए जा सकते हैं। केवल इस भारत देश में, हमारे देश में इस प्रकार की विविधताएं हैं, विविध प्रकार के व्यंजन विविध प्रकार के प्रांतों में पाए जाते हैं। गुजरात में आपको अलग मिलेगा खाने को, महाराष्ट्र में मिलेगा अलग, बंगाल में अलग मिलेगा, दक्षिण भारत जाएंगे वहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, और मध्य प्रदेश जाएँ वहाँ अलग मिलेगा, यूपी की तरफ जाएँ वहाँ पर अलग प्रकार के व्यंजन मिलेंगे आपको, राजस्थान में जाएँ अलग प्रकार का व्यंजन मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं इस देश में, और प्रभुपाद जी कृपा से आज तो इस्कॉन के मंदिर जो हैं पूरे भारतवर्ष में भी हैं और पूरे पृथ्वी में हैं। तो इतने नाना प्रकार के व्यंजन जो भोग लगाए जा रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगाए जा रहे हैं, वो एक बहुत ही अद्भुत बात है, है ना, नाना प्रकार के। तो यहाँ पर तो कुछ व्यंजनों का वर्णन किया जा रहा है, नारियल का गुद्दा दही तथा मिश्री के से बना व्यंजन अत्यंत मीठा था, केले के फूल की कड़ी और दूध के साथ पकाया गया कुमड़ा प्रचुर मात्रा में था, मीठे तथा खट्टे बड़े और 5-6 तरह के खट्टे व्यंजन थे, सारी तरकारियां इस तरह बनाई गई थी कि वहां पर उपस्थित सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर सके। मूंग की दाल के बड़े, पके केले से बने बड़े, उड़द की दाल के बड़े, तरह तरह की मिठाइयां, शीर पुली, चावल के बड़े खीर के साथ नारियल से बना व्यंजन तथा सभी प्रकार के बड़े। उत्तरी भारत में जाएंगे तो आपको हर पदार्थ में, व्यंजन में आपके साथ में प्याज मिलता है, प्याज सब में डालते हैं, सब्जी में, दाल में, सब में सब प्याज मिलता है। दक्षिण भारत में जाएंगे आप तो सब में नारियल डालेंगे, सब्जी में नारियल डालेंगे, सब में नारियल डालेंगे, बिना नारियल के वो रह नहीं सकते। तो अलग अलग सबका कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है। सारी तरकारियां ऐसे केले के पत्ते में बने दोनों में परोसी गई थी, जिनमें कम से कम 32 घेवर लगे थे। ये दोनों काफी मजबूत थे और इधर उधर हिल डुल नहीं सकते थे, ना तिरछे हो सकते थे। भोजन करने के तीनों स्थानों के चारों ओर तरह तरह की तरकारियों से भरे 100 डोने थे। सभी तरकारियों के चारों ओर घी से मिश्रित खीर रखी थी। अद्वैत आचार्य ने क्या बोला था पहले, अद्वैत आचार्य का बड़ा सादा सा बनाया है प्रसाद, सरल सा भोजन है, आगे आप स्वीकार कर लें, थोड़ा कुछ भी हमारी क्षमता के अनुसार हमने बनाया है, है ना। सभी तरकारियों के चारों ओर घी से मिश्रित खीर रखी थी, इसे नए मिट्टी के बर्तनों में रखा गया था, ओटे दूध से भरे मिट्टी के बर्तन तीनों स्थानों पर रखे गए थे। अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध में बिना चिवड़ा और उसके साथ मिलाया गया केला तथा दूध में पकाया गया सफेद कुमड़ा था, वहां पर उपस्थित सभी व्यंजनों को बता पाना मेरे लिए कठिन है। तो बहुत सारे व्यंजन थे, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो केवल कुछ ही व्यंजनों का वर्णन कर रहा हूं, सब प्रकार के व्यंजनों का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। दो स्थानों पर दही, संदेश तथा केला से बना एक अन्य व्यंजन मिट्टी के पात्रों में भर कर रखा हुआ था, मैं उन सबों का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूं। पके चावल एवं सारी तरकारियों के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियां थी, सुगंधित गुलाब जल से भरे पात्र भी रखे थे, तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े बिछे थे। इस तरह भगवान कृष्ण को सारी भोज्य सामग्री अर्पित की गई और उन्होंने इसे बड़े ही मन से ग्रहण किया। भोजन अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न करने की प्रथा है। अद्वैत प्रभु ने दोनों भाइयों चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को आरती देखने के लिए कहा। दोनों प्रभु वहां पर उपस्थित सारे लोग आरती उत्सव देखने लगे। मंदिर में अर्चना वगैरह की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण को सुला दिया गया। तब अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से कुछ निवेदन करने निकले। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, हे प्रभु इस कमरे में चले। तब श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाई प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु प्रसाद लेने गए तो उन्होंने मुकुंद तथा हरिदास को अपने साथ चलने के लिए बुलाया, किंतु मुकुंद तथा हरिदास दोनों ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। बुलाए जाने पर मुकुंद ने निवेदन किया, हे महाशय मुझे कुछ काम करना शेष है, मैं बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगा, अतएव आप दोनों प्रभु कमरे के भीतर जाएं। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं अत्यंत पापी और अधम हूं, मैं बाहर ही प्रतीक्षा करते हुए बाद में एक मुट्ठी भर प्रसाद खाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप में थे तो अलग अलग जगह पर जाते और अलग अलग प्रकार का जो है व्यंजन ग्रहण करते, यहाँ तक कहीं घरों में जाकर चोरी भी करते, संदेश चोरी करते, कभी माखन मिश्री चोरी करते, और कई बार तो श्रीधर पंडित के घर जाते तो वहां जाकर क्या करते, केले निकाल लेते, उनसे जबरदस्ती केले ले लेते। तो इस प्रकार यहां पर अद्वैताचार्य ने बड़े आदर से प्रेम से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आमंत्रित किया। इनको भी बुलाया गया था, हरिदास ठाकुर को और मुकुंद दत्त को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम बाद में ग्रहण कर लेंगे, पहले ये ग्रहण कर लें। अद्वैताचार्य अपने साथ नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे के भीतर ले गए, जहां दोनों प्रभुओं ने प्रसाद की व्यवस्था देखी। देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले भोजन के पकाने को सारी विधियों की अर्भतना की। वह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कह दिया, साफ साफ कहता हूं कि जो कोई कृष्ण को इतना अच्छा भोजन अर्पित कर सकता है उसके चरण कमलों में मैं जन्म जन्मांतर अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो इस प्रकार से व्यंजन अर्पित कर सकता है, नाना प्रकार के विविध प्रकार के व्यंजन अर्पित कर सकता है अपने क्षमता के अनुसार या अपने क्षमता से बढ़कर कोई अर्पित करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे भक्त के चरण जो है वो मैं शीश में धारण करने के लिए तैयार हूं। तो चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए अद्वैताचार्य के इस भाव को देखकर। इसलिए जब मार्गेंद्रपुरी के तुर्भाव के दिवस के दिन जाते हैं, शांतिपुर जाते हैं, तो प्रथा है वहां पर हजारों हजारों की तादाद में वहां पर शांतिपुर के निवासियों को हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, है ना। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो इस दिवस पर जाकर शांतिपुर में जाकर श्रीपाद मार्गेंद्रपुरी के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष में जाकर वहां प्रसाद ग्रहण करेगा या प्रसाद का वितरण करेगा, उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हरि बोल। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे में घुसे तो उन्होंने भोजन के तीन भाग देखे और ये समझा ये तीनों कृष्ण के लिए है, किंतु वह अद्वैत आचार्य के मनोभाव को नहीं समझ पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो इन तीन दानों पर बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करें, किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा मैं प्रसाद वितरण करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु सोचा कि तीनों परसे भोजन वितरण करने के लिए है, अतएव उन्होंने ये कहते हुए दो बड़े बड़े केले के पत्ते मांगे, हमें थोड़ी तरकारी तथा चावल परोसे। अद्वैत आचार्य ने कहा इन आसनों पर बैठे, उन्होंने उन दोनों के हाथ पकड़कर बिठाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी के लिए उचित नहीं है कि इतने तरह के भोजन करें, यदि वह ऐसा करता है तो फिर वह अपनी इंद्रियों को किस तरह वश में रख सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श साबित कर रहे हैं कि सन्यासी को कितना सतर्क रहना चाहिए कि नाना प्रकार के भोजन व्यंजन ना प्राप्त करें। अगर इस प्रकार का अधिक नाना प्रकार के भोजन व्यंजन भी बनाए जाते हैं तो उसमें से कुछ ही अल्प मात्रा में ग्रहण किया जाए। और वैष्णव समाज में तो प्रथा है कि जो वैष्णव सन्यासी हैं तो वो प्रसाद अपना उचित छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे केवल सन्यास आश्रम का धर्म है तो वो ये बताया, यहाँ पर बताया गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि वास्तव में सन्यासी का धर्म है कि कुछ भी ना छोड़े वो प्रसाद, सब कुछ प्रसाद पूरा का पूरा ग्रहण करें। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना सारा व्यंजन बनाया गया है तो इतना सारा व्यंजन मैं कैसे ग्रहण करूँगा, क्योंकि ये सन्यासी का कर्तव्य है कि सारा का सारा ना ग्रहण करें। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो कृपा करके छोड़ देते हैं अन्य भक्तों के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहले से परोसे हुए उस भोजन को ग्रहण नहीं किया तो अद्वैत आचार्य ने कहा कृपया अपना दुराग त्यागिए, मैं जानता हूं कि आप कौन है और मैं आपके द्वारा सन्यास लेने के रहस्य को भी जानता हूं। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वाक चातुरी त्याग कर भोजन करें। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया मैं इतना भोजन नहीं खा सकता। तब अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु से अनुरोध किया कि वह बहाना छोड़कर प्रसाद ग्रहण करें, यदि वे पूरा नहीं खा सकते तो शेष भाग थाली पर पड़ा रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं इतना भोजन नहीं खा सकूंगा और ये सन्यासी का धर्म नहीं है कि झूठन छोड़े, तो ये सन्यास धर्म बता रहे हैं लेकिन वैष्णव जो है वो कृपा करके छोड़ते हैं। इस संदर्भ में श्री अद्वैताचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथपुरी में भोजन करने का हवाला दिया। भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। अद्वैताचार्य ने बताया कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु इससे 54 गुना खाते हैं और हर बार वे सैकड़ों पात्र का भोजन करते हैं। वहां कैसे खा लेते हैं आप, जगन्नाथपुरी में तो खाते ही रहते हैं आप, सुबह से शाम तक तो खाना ही खाना लगा रहता है। 1500 रसोई जो आपको खिला रहे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं आपके लिए, है ना, और वहां तो आप खाते ही रहते हैं सुबह से शाम तक तो। वहां कैसे खा लेते हैं। श्री अद्वैताचार्य ने कहा तीन जन जितना खाते हैं वह आपके एक कोर के बराबर भी नहीं है, उसकी तुलना में खाद्य पदार्थ आपके 5 कोर भी नहीं होंगे। अद्वैताचार्य ने कहा यह मेरा परम सौभाग्य कि आप मेरे घर पधारे हैं, कृपया बातें मत बनाइए, बातें ना करके भोजन करना शुरू कीजिए। यह कहकर अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं को जल दिया जिससे वे दोनों अपने हाथ धो सके। तब दोनों प्रभु बैठ गए और हंसते हंसते दोनों प्रसाद खाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अब नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं देखिए, मैं लगातार 3 दिनों में से उपवास करता रहा हूं, मुझे आशा थी कि आज मेरा उपवास टूटेगा। जहां श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि भोजन की मात्रा अत्यधिक है, वही नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि वह तो एक और भी नहीं है, वह 3 दिन से उपवास कर रहे थे और उन्हें पूरी आशा थी कि आज वे अपना उपवास भंग करेंगे। उन्होंने कहा, यद्यपि अद्वैत आचार्य ने मुझे आज खाने के लिए बुलाया है, किंतु आज भी मेरा उपवास है, इतने भोजन से तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। तो गिरिराज जी ने भी खूब स्वीकार किया था, भोग अर्पण किया गया था, गिरिराज जी को अन्नकूट महोत्सव जो बनाया गया था ब्रज में, है ना, तो गिरिराज जी ने अपना मुंह खोल लिया, है ना, क्योंकि ब्रजवासी लोग तो इंद्र के लिए बनाए हुए थे सारा कुछ। और फिर जब कृष्ण ने नंद महाराज को विश्वास दिला दिया कि वास्तव में ये जितना भी व्यंजन है वास्तव में गिरिराज जी को भोग लगाना चाहिए, और आज तक जितना भी भोग लगाते रहे, आपने इतने सालों से सैकड़ों सालों से आपके पूर्वजों ने और आपने भोग लगाया, इंद्र को भोग लगाया, लेकिन आज तक कहीं आपने देखा उनको खाते हुए? और ये देखिए आप गिरिराज जी को कितना सारा व्यंजन ग्रहण कर रहे हैं, मुंह खुला हुआ है, ये भोग स्वीकार कर रहे हैं आप देखिए। तो इस प्रकार गिरिराज जी को भोग लगाया जा रहा था, नाना प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जा रहे थे और नाना प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की तरकारियां और व्यंजन बना के लाए थे अपने अपने घर से, और गिरिराज जी खाए जा रहे हैं और अंत ही नहीं हो रहा उसका, और बार बार बोल रहे हैं नहीं और लेके आओ और लेके आओ। तो ब्रजवासी कितना लाते, जितना घर में था उतना ले आए, और आखिर में फिर वो तुलसी का दल लेके आए टोकरी में भरकर, तो उसको ग्रहण करके फिर गिरिराज जी ने टकार लिया। तो गिरिराज जी को फिर इस प्रकार पूजा किया गया, उनकी आराधना की गई, और स्वयं भगवान कृष्ण ने, परम भगवान ने नाना प्रकार के व्यंजन जो बनाए गए थे, क्या क्या बनाया जाए उनके लिए, किस प्रकार उनको भोग लगाया जाए, ये सारी विधि विधान जो है स्वयं कृष्ण ने बताई थी, परम भगवान ने बताई। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आप तो तीर्थों की यात्रा करने वाले सन्यासी ठहरे, कभी आप फल खाते हैं तो कभी कंदमूल और कभी केवल उपवास करते हैं। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं और आप मेरे घर पधारे हैं, आपको जो थोड़ा बहुत भोजन मिला है इतने से संतुष्ट हो और अपनी लोभी मनोवृत्ति को छोड़ दें। अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, मैं जो भी हूं आपने मुझे बुलाया है, अतः आपको चाहिए कि मैं जितना खाना चाहूं उतना दूं, उतना आप दें मुझे। तो ये सेवा करने की विधि है, जब हम सेवा करते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति की जो विधि है वो ये है, वैदिक संस्कृति जिसको कहते हैं, वैदिक संस्कृति में यह है कि जो प्रसाद लेने वाला व्यक्ति है उसको खाली ना छोड़ा जाए, एक के बाद एक आइटम आता जाए। अगर आप देखेंगे प्रभुपाद लीलामृत में तो नहीं है वर्णन, लेकिन एक जगह वर्णन है किस तरह से प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को प्रसाद खिलाया, भक्तिवेदान मेनोर में था या कहीं और था, तो प्रभुपाद ने प्रसाद परोसा और प्रभुपाद खिलाते गए एक के बाद एक आइटम खिलाते गए प्रभुपाद, और उनसे खाया नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, नहीं अभी कहाँ हुआ है, अब तो कुछ खाया नहीं है, और लो। तो प्रभुपाद खिलाए जा रहे हैं और जॉर्ज हैरिसन खाते जा रहे हैं। फिर आखिर में जॉर्ज हैरिसन इतना खा लिया, बोलते हैं जिसने भी ये बनाया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा बनाया आप लोगों ने। तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं किस तरह से प्रसाद सर्व करना चाहिए, तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य भी दिखा रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं अद्वैत आचार्य को, अद्वैत आचार्य को नित्यानंद की बात सुनने के बाद मौका मिला कि वे मजाक करते, वह इस प्रकार बोले। अद्वैत आचार्य ने कहा, तुम भ्रष्ट परमहंस हो और तुमने पेट भरने के लिए संन्यास ग्रहण किया है, मैं समझ गया तुम्हारा पेशा है ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाना। नित्यानंद प्रभु को कोसते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा, तुम 10-20 मन चावल खा सकते हो, मैं तो ठहरा निर्धन ब्राह्मण, भला इतना चावल कैसे पा सकता हूं? जो कुछ तुम्हें दिया है आपको दिया है, भले ही वह मुट्ठी भर चावल क्यों ना हो, उसे खाओ और उठो, अपना पागलपन मत दिखलाओ और झूठन को इधर उधर मत फेंको। इस तरह नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करते रहे और अद्वैत आचार्य से मजाक करते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जितनी तरकारियां परोसी गई थी उन्होंने उनमें से हर एक को आधा आधा लेकर छोड़ दिया। जब पत्ते की आधी तरकारी चुक जाती तो अद्वैत आचार्य फिर से उसे पूरा कर देते। इस तरह जो ही महाप्रभु आधा व्यंजन समाप्त करते कि अद्वैत आचार्य पुनः पुनः उसे पूरा कर देते। दोनों को तरकारी से पूर्ण करके अद्वैत आचार्य उनसे प्रार्थना की कि और खाएं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं और कितना खा सकता हूं। अद्वैत आचार्य ने कहा कृपा करके मेरे द्वारा दिए हुए अन्न को ना छोड़ें, अब मैं जो भी दे रहा हूं उसको आधा लेकर आधा छोड़ सकते हैं। इस तरह विविध प्रकार से अनुनय विनय करके अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। नित्यानंद प्रभु ने पुनः हंसी में कहा मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, अपना भोजन ले जाइए, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया। तो ये कहकर नित्यानंद प्रभु ने एक मुट्ठी भर चावल लिया और उसे फर्श पर अपने आगे फेंक दिया मानो वे क्रुद्ध हों। जब इसे फेंके हुए चावल के दो चार दाने अद्वैताचार्य के शरीर से लगे तब उसी तरह चावल लगे शरीर से तरह तरह से नाचने लगे। जब उनके अद्वैताचार्य के शरीर में वो चावल लगा तो अद्वैताचार्य फिर क्या करने लगे, नाचने लगे। जब नित्यानंद प्रभु द्वारा फेंका गया चावल अद्वैताचार्य के शरीर से जा लगा तो आचार्य ने परमहंस नित्यानंद द्वारा फेंके गए उस झूठन के स्पर्श से अपने को परम पवित्र समझा। अद्वैताचार्य ने हंसी हंसी में कहा अरे नित्यानंद, मैंने आपको आमंत्रित किया है और उसका फल भी मुझे मिल चुका है। आपको कोई जाति, आपकी कोई जाति या कुल नहीं है, आप स्वभाव से ही पागल हो। आपने मुझे भी अपने समान पागल बनाने के लिए मेरे ऊपर झूठन फेंका है, तो मुझे भी आपने पागल बनाया है। किस तरह से पागल बनाया है, ये चावल फेंक कर। और आपको इसका भी डर नहीं हुआ कि मैं एक ब्राह्मण हूं। नित्यानंद ने उत्तर दिया ये भगवान कृष्ण द्वारा छोड़ा गया झूठन है, यदि आप इसे सामान्य झूठन समझते हैं तो आपको अपराध कर रहे हैं। यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं तो आपका अपराध खंडित हो सकेगा। तो कम से कम आपको किस 100 सन्यासियों को बुलाकर प्रसाद खिलाना पड़ेगा, आपने अपराध कर दिया, इसको झूठन बोल दिया आपने। अद्वैताचार्य ने उत्तर दिया अब मैं फिर से किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा आज से, क्योंकि सन्यासी ने ही मेरे ब्राह्मण स्मृति नियमों को बिगाड़ा है। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ और मुंह धुलवाए, फिर उन्हें उत्तम बिस्तर पर लेकर विश्राम करने के लिए लिटा दिया। श्री अद्वैत आचार्य ने दोनों जनों को लौंग तथा इलायची के साथ तुलसी मंजरियां खिलाई। इस तरह उनके मुखों में सुगंध युक्त स्वाद उत्पन्न हो गया। श्री अद्वैत आचार्य ने दोनों जनों के शरीर पर चंदन का लेप किया और फिर उन्हें वक्षस्थलों पर सुगंधित फूल की मालाएं पहनाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस तरह से अद्वैत आचार्य ने बड़े प्रेम पूर्वक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु का व्यक्तिगत रूप से उनको परोसा, प्रसाद परोसा। तो ये बताने का उद्देश्य यह था हमारा कि जब हम लोग ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं तो वो श्रद्धापूर्वक और प्रेमपूर्वक भगवान को अर्पित होना चाहिए। इसलिए जो पुजारी लोग हैं जो अर्चन वगैरह के लिए भोग बनाते हैं उनको चाहिए कि हरिनाम लेते हुए कृष्ण कथा सुनते हुए ठाकुर जी का भोग तैयार करें और जब अर्चन वगैरह को भोग लग रहा हो तो बाहर भक्त लोग संकीर्तन करें। इसीलिए भक्तों ठाकुर ने भोग आरती भी लिखी है और भक्त लोग भोग आरती गाते हुए राधिका रमन को, जगन्नाथ बल सुभद्रा जी को, शशि गौरताय को भोग लगा सकते हैं, कृष्ण बलराम को भोग लगाएं और ठाकुर जी बड़े प्रेम से इस भोग को स्वीकार करें, है ना। शची माता एक बार सपना देखती है, क्या सपना देखती है कि कृष्ण बलराम का अर्चन वगैरह उनके घर पे है और क्या हुआ कि नित्यानंदपुर और निमाई जो है वो पहुंच गए, अंदर पहुंच गए मंदिर के अंदर और वहां जो भोग रखा हुआ था उसको ठाकुर खाने लगे। तो बोले ये तुम लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए रखा हुआ है, ये हमारे लिए रखा हुआ है। तो महाप्रभु कहते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अब आप लोगों के दिन पूरे हो गए, है ना, अब वैश्यों का जमाना नहीं रहा, अब ब्राह्मणों का जमाना आ गया है, ये हमारे लिए है। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा वार्तालाप होता है और इस प्रसंग में फिर बाद में काफी झगड़ा हो जाता है। तो फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु बोलते हैं
मुझे तुम्हारे कृष्ण से डर नहीं है क्योंकि मेरे स्वामी तो गौरचंद्र है। तो इस प्रकार बड़ा ही हास परिहास बताया उनके बीच में। और सती माता बाद में उठ जाती है, खड़ी हो जाती है, जब सपना टूटता है तो वो देखते हैं कि सामने महाप्रभु खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, और उनको बताते हैं कि ये, फिर वो बताते हैं कि क्या हुआ, क्या सपना उन्होंने देखा। तो इस प्रकार सती माता जो है नाना प्रकार के सपने देखते हैं। और एक बार नित्यानंद प्रभु के लिए सती माता ने संदेश रखा था, चार संदेश ला कर दिए, और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, एक संदेश लिया और बाकी तीनों संदेश उठा के बाहर फेंक दिए। सची माँ ने कहा मेरे पास और कुछ है ही नहीं, मैंने इतना तुम्हारे लिए बना के रखा था और है नहीं मेरे पास कुछ तुम्हें देने के लिए, और तुमने उसको भी फेंक दिया बाहर। तो फिर जब नित्यानंद प्रभु देखा कि सची माता बहुत घबराई हुई है, परेशान है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा करो, आप मुझे लगता है कि वो रसोई में अभी भी रखा हुआ है। तो सची माता ने कहा रसोई में रखा हुआ है, मैं तो लेकर आई थी चार संदेश। तो सची माँ जाती है, अंदर जाती है, रसोई में जाके देखती है, वहां पर चार संदेश होता है। बोलते तो चार संदेश यहाँ रखा हुआ है। तो फिर वो संदेश लेकर फिर से जाती है नित्यानंद प्रभु के पास। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाती है तो वहां देखते हैं कि थाली में संदेश पहले से ही है जो उन्होंने फेंके थे। तो सची माँ कहते हैं कि मैं, तुमने तो ये संदेश फेंक दिया था, फिर संदेश वापस कहां से आए? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैंने देखा कि जब आप बहुत परेशान हो रही हैं मेरे वजह से, तो मैं संदेश बाहर वापस लिया है बाहर से, और संदेश जो मैंने फेंके थे वापस लेकर आ गए। तो सची माँ को समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो इस प्रकार नाना प्रकार की लीला है, ये महाप्रभु की लीला है, और इसी तरह से परम भगवान कृष्ण की लीला में भी हम देखते हैं नाना प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाया गया। एक और वृतांत है जिसमें रघुनंदन ठाकुर, क्योंकि पिता मुकुंद जो होते हैं, मुकुंद दास कहते हैं रघुनंदन ठाकुर से कि तुम गोपीनाथ को भोग लगाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, और ये जरूर देख लेना कि गोपीनाथ इसको जरूर खाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो रघुनंदन ठाकुर जो है वो बालक थे छोटे से, और हृदय उनका बहुत निर्मल था, उन्होंने भोग लगाना स्वीकार किया, और भोग लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि थाली की वैसे ही है, कुछ खा नहीं रहे हैं गोपीनाथ। तो गोपीनाथ को उन्होंने बोला कि लो लो खाओ खाओ, खाते क्या नहीं तुम? तो धीरे धीरे जब बहुत ही बार बार कहने पर जब गोपीनाथ ने देखा कि रघुनंदन ठाकुर का हृदय बड़ा सरल है और बहुत प्रेम पूर्वक अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो गोपीनाथ ने क्या किया, वो सब कुछ खा लिया, सारा का सारा खा लिया। तो उसके बाद फिर वापस आए मुकुंद, जब वापस आए तो रघुनंदन को बुलाया, रघुनंदन तुमने भोग लगा दिया था गोपीनाथ को? अरे हाँ मैं तो लगा दिया, लाओ फिर प्रसाद लेकर आओ। महाप्रसाद उन्होंने सब कुछ खा लिया। सब कुछ कैसे खा लिया, कहाँ है दिखाओ थाली? तो जाके देखा थाली में कुछ है ही नहीं। तो उनको थोड़ा शक हुआ, उनको लगा कि ऐसा लगता है रघुनंदन ने सारा कुछ खा लिया है, भोग लगाने के उपरांत सब कुछ खा लिया होगा इसने। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम दोबारा भोग लगाओ। तो लड्डू दिया इस बार, तो लड्डू जब भोग लगाने के लिए दिया तो कुछ समय के बाद क्या देखा उन्होंने कि लड्डू जो है केवल आधा पड़ा हुआ है। आधा इसलिए पड़ा है क्योंकि गोपीनाथ जी का पेट पूरा भर चुका है, अब वो पूरा लड्डू नहीं खा सकते हैं, केवल आधा ही बचा लड्डू। तो आधा लड्डू जब देखा तो फिर मुकुंद हैरान हो गए रघुनंदन ठाकुर को देखकर कि वास्तव में मैं इतने दिन से भोग लगा रहा हूं, आज तक तो कभी इस तरह से गोपीनाथ ने स्वीकार नहीं किया, और मेरा छोटा सा बालक है, इसके कहने पर गोपीनाथ ने पूरी थाली जो है सफाचट कर दी। और बाद में फिर रघुनंदन ठाकुर और मुकुंद जब जगन्नाथपुरी जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप में से पिता कौन है और पुत्र कौन है? तो मुकुंद कहते हैं कि ये मेरा पिता और मैं इसका लड़का पुत्र हूँ, क्योंकि ये भक्ति में कहीं बड़ा आगे बढ़ा चढ़ा है मुझसे, क्योंकि इसके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, और गीता में भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि हम, तो जिस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति होगी उसी तरह से भगवान ऐसा भेद को स्वीकार करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब हम भोग लगाते हैं उसमें जो श्रद्धा है और भावनाएं हमारी शुद्ध होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम लोग हरि नाम संकीर्तन में भाग लें, जब हम ध्यानपूर्वक साधना भी करें, मंगल आरती में आए, श्रीमद् भागवत सुने, ध्यानपूर्वक महामंत्र का जप करें, और फिर जब भोग लगाएंगे तो हमारा जो हृदय जो होगा क्या होगा, निर्मल होगा। लेकिन साधना नहीं होगी, पुजारियों के साथ समस्या क्या होती है, कि सारा समय उनका श्रृंगार में चला जाता है जब उनको जप करना होता है कि नहीं, तो इसलिए उस समय जप नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाद में क्या करना चाहिए, पुजारियों को क्या करना चाहिए, वो मंदिर में आए 10 बजे के बाद, बैठे मंदिर में अर्चक वगैरह के सामने बैठकर जप करें, पूरा अपना जप पूरा करें। और इस तरह से क्या होगा, जब वो खुद हरि नाम लेंगे तब जो है पूरा लाभ मिलेगा। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में कि अर्चक वगैरह की सेवा पूरी नहीं मानी जाती जब तक साथ में हरि नाम ना हो। केवल अर्चक वगैरह की सेवा नहीं, कोई भी सेवा, 64 भक्ति के अंग है, जो भी अंग है 64 भक्ति के जितने भी अंग हैं, सारे भक्ति के अंगों में साथ साथ हरिनाम लेना बहुत आवश्यक है। जैसे हम नदी मंडल परिक्रमा कर रहे थे तो साथ साथ हम लोग क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, है ना, केवल चल नहीं रहे थे हम लोग। मंदिर की सफाई होती है जब गुंडीचा मदन मार्जन किया जितने महापुरुषों ने अपने पार्षदों के साथ, तो साथ में क्या किया, हरिनाम भी लिया। और इसी तरह से अर्चक वगैरह की जब सेवा करते हैं तो साथ में हमें हरिनाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर इसी तरह से अनेकों वस्तु अर्पित की गई भगवान को, यज्ञ अर्पित की गए उन पुरोहितों के द्वारा। और हालांकि उतनी आवश्यकता नहीं थी, हालांकि उतनी आवश्यकता नहीं थी कि जितना वहां पर सामग्री रखी हुई थी उतनी आवश्यकता नहीं थी, जरूर से ज्यादा रखी हुई थी, लेकिन आवश्यकता किसकी है, श्रद्धा और प्रेम की है। तो श्रद्धा और प्रेम से जब भी भगवान को भोग लगाया जाता है तो भगवान श्रद्धा और प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा गया है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज के श्लोक से हमें शिक्षा ले सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, किसी
कोई प्रश्न
वो हमने बता दिया आपको, हमने शुरू में ही बताया था, इसलिए हम तुलसी लल रखते हैं और गुरु परंपरा के माध्यम से भोग लगाते हैं, क्योंकि बद्ध जीवात्माओं से भगवान सेवा नहीं लेते हैं, इसलिए हमें निमित्त बनाना पड़ता है, गुरु परंपरा को निमित्त बना, गुरु परंपरा के माध्यम से निमित्त, निमित्त तो खुद बन गए लेकिन गुरु परंपरा के माध्यम से हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। इसलिए जब अर्चक वगैरह की सेवा शुरू की जाती है प्रातःकाल, सबसे पहला कर्तव्य क्या है पुजारी के लिए, सबसे पहले वो गुरु पूजा करता है, गुरु का ध्यान करता है, बिना गुरु की पूजा के अर्चक वगैरह की सेवा भी प्रारंभ नहीं होती है। तो इस तरह से हम अर्चक वगैरह के साथ संबंध जोड़ पाते हैं, नहीं तो संबंध जोड़ ही नहीं सकते हम अर्चक वगैरह के साथ, तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पांचरात्रि विधि भी आवश्यक है भागवत विधि के साथ साथ, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। कोई भी अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो अगर वो केवल भागवत विधि का ही सहारा लेगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि निरापराध नाम तो ले नहीं रहा, वो शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जो पांचरात्रि की विधि के द्वारा जब अन्य मंत्र प्राप्त होते हैं, गायत्री मंत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं और अर्चक वगैरह की सेवा में हम लोग लगते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, इससे हम लोग धीरे धीरे कर्मशः क्या होता है, रजोगुण के प्रभाव से हटते हैं। अर्चक वगैरह की सेवा करने से हमारा रजोगुण जो है वो शांत होता है, हम तमोगुण से ऊपर उठते हैं, रजोगुण से ऊपर उठते हैं और क्रमशः धीरे धीरे सत्वगुण में स्थित होते हैं, और इस तरह से धीरे 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 फिर हम लोग ब्राह्मण के स्तर पर आते हैं, और बिना ब्राह्मण बने कोई वैश्य नहीं बन सकता है। इसलिए दोनों ही आवश्यक है, पांचरात्रि की विधि और भागवत विधि, जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो फिर हमारा विकास निश्चित रूप से होता है। पांचरात्रि विधि में अर्चक वगैरह की सेवा आती है, पांचरात्रि विधि में अर्चक वगैरह की विशेष रूप से सेवा आती है, जिसमें अर्चक वगैरह की स्थापना की जाती है, और जैसे गायत्री मंत्र जो मंत्र दीक्षा मिलती है हमें पांचरात्रि विधि के अनुसार मिलती है, पांचरात्रि विधि के अनुसार ही हम लोग आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें यज्ञ होता है, यज्ञ किया जाता है और साथ में तपस्या होती है, तपस्या का मतलब चार नियमों का जो हम पालन करते हैं उसको भी तपस्या कहते हैं। एक तपस्या ये भी होती थी प्राचीन समय में, गुरु जो है क्या करते थे, 12 तिलक खुद लगाते थे शिष्य के शरीर में, आजकल तो हम खुद लगाते हैं लेकिन जो प्राचीन पद्धति वैदिक पद्धति है कि गुरु लगाते थे शरीर शिष्य के शरीर में, आजकल क्योंकि हजारों की तादाद में दीक्षा लेते हैं तो सबके शरीर में तिलक लगाने में तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन प्राचीन जो वैदिक पद्धति है उसमें यह है कि ऊर्ध पुंड तिलक जो लगाया जाता है वो गुरु के द्वारा लगाया जाता था, जो कि बहुत गर्म होता था, तिलक छाप जिसको होता था, तो शरीर में उसको लगाना पड़ता था चिन्ह को। श्री संप्रदाय में जाएंगे तो तिलक जो है कई लोग परमानेंट ही लगा के रखते, तो इसको भी ताप कहते हैं, तपस्या कहते हैं, है ना। तो चार नियमों का पालन करना ये तपस्या है। इस तरह से इसको पंच संस्कार कहते हैं, पांच प्रकार के संस्कार होते हैं, यज्ञ होता है और उसके बाद नाम होता है, नाम बदला जाता है, नाम मतलब जो है भक्त का नाम बदला जाता है, या फिर हम हरि नाम लेते हैं, जैसे कि पहले नाम दीक्षा ली जाती है, भक्तों ठाकुर कहते हैं ना, जैसे पहले जो दीक्षा होती है वो नाम दीक्षा होती है जिसमें नाम ग्रहण करते हैं। तो जिस तरह से तो इस पंच संस्कार में हरिनाम दीक्षा भी जो है शामिल हो जाता है, या फिर भक्त का नाम बदला जाता है, तो इसलिए दीक्षा में नाम बदलना बहुत जरूरी है। तो ये नाम और साथ में ऊर्ध पुंड मतलब तिलक लगाया जाता है, तिलक लगाना होता है, ऊर्ध पुंड तिलक जो लगाते हैं ये भी दीक्षा संस्कार में आता है। तो इस प्रकार पंच संस्कार होते हैं, और पंच संस्कार में अगर नहीं होता है तो फिर वो दीक्षा जो है वो पूरी नहीं मानी जाती है, दीक्षा का विधान जो है वो शुरू नहीं होता है। तो पंच संस्कार आवश्यक है, ये सारे पांच रात्रि विधि में आते हैं। तो इसके बाद जो है भक्त जो है फिर वो अर्चक वगैरह की सेवा करने के लिए तैयार होता है। तो ये मंत्र जो होते हैं और जो हरिनाम होता है ये हमारा संबंध जोड़ता है अर्चक वगैरह से, इसलिए भक्तों को बहुत जरूरी है भक्तों के लिए कि अर्चक वगैरह के समक्ष आए, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें, उनको दंडवत करें, तो ये बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से अपना संबंध जोड़ते हैं भगवान से, संबंध ज्ञान स्थापित होता है, अर्चक वगैरह की सेवा करने से संबंध ज्ञान स्थापित होता है, और सदा धीरे धीरे हम लोग देहात्म बुद्धि से ऊपर उठते हैं। तो इस प्रकार है पांच रात्रि की विधि में सब आ जाता है, यज्ञ करना भी पांच रात्रि की विधि में आता है, फाइव सैक्रीफाइस। भागवत विधि में श्रवण कीर्तन, नवदा भक्ति के जो अंग है विशेष रूप से श्रवण कीर्तन है, श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब भागवत विधि में आता है। तो ये दोनों विधियां साथ साथ चलनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब उन्होंने गौड़े मठ की स्थापना की तो उन्होंने जो लोगो बनाया उसमें उन्होंने दिखाया रेलवे लाइन, दिखाया दो लाइन दिखाया उन्होंने रेलवे लाइन, उन्होंने कहा कि एक पटरी है भागवत विधि, दूसरी पटरी है पांच रात्रि विधि, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में हम लोग शुद्ध नाम नहीं ले पाते हैं, बहुत मुश्किल है शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचना, इसलिए अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है शुद्धिकरण के लिए। तो इसलिए अर्चक वगैरह की सेवा जो है, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 11वें स्कंद के जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं, तो उसमें उद्धव की जिसको कहते हैं जिसमें डीटी वर्ष का पूरा अध्याय आता है, तो उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने टीका में लिखा है कि प्राकृत भक्तों के लिए अर्चक वगैरह की सेवा करना अनिवार्य है, आवश्यक है बहुत, अगर वास्तव में हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्रोसेस को जो है जब पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, पूर्ण रूप में फॉलो किया जाता है, तब हम लोग प्रोग्रेस कर पाते हैं। इसलिए बताते हैं कि कई बार अखंड कीर्तन जब होता है 24 घंटे का, तो उसमें अखंड कीर्तन करने से पहले या 72 घंटे का, तो उसमें कई बार शुरू में फायर सेक्रीफाइस भी करते हैं अखंड कीर्तन करने से। कोई पूछेगा कि हरिनाम संकीर्तन के लिए फायर सेक्रीफाइस की क्या आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है कलयुग में। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब फायर सेक्रीफाइस होगा आग की लपटें देकर क्या होगा, लोग आएंगे, आग की लपटें देकर लोग आएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, पांचरात्रि विधि जो है भागवत विधि को शेप देता है, शेप देता है, एक बेस बना के देता है। तो जो बेस हमारा जो स्ट्रांग हो जाता है फिर भागवत विधि का हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान के धाम में गोलोक धाम में भागवत विधि है, लेकिन उस धाम में पहुंचने के लिए हमें पांचरात्रि विधि का सहारा लेना पड़ता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तों की जय।